मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 19 नवंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से मैंने भय नामक विषय पर बात करने की शुरुआत की है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब इस विषय को पसंद कर रहे हैं। और मेरे लगने का सीधा सा जो कारण हो सकता है वो यही कि आप सब मेल लिख करके इस बातचीत में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। मुझे कुछ ऐसे मेल मिले हैं जिनमें से दो का मैं विशेष रूप से यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। इनमें से एक है अविनाश जो झारखंड से हैं और दूसरी है रचना कुमरा, ये कहाँ से हैं इन्होंने नहीं लिखा है। दूसरे भी मेल मिले हैं लेकिन इन दोनों ने चूंकि भय के अपनी स्थिति का थोड़ा विस्तार के साथ उल्लेख किया है तो इसीलिए मैंने इन दोनों के नाम यहाँ मेंशन किए हैं। तो अविनाश और रचना और बाकी दूसरे भी मेरे दोस्त, आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। नो डाउट कि आपने जो अपने भय के बारे में लिखा है उनकी स्थितियाँ अलग अलग हैं। आप सब भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। जब हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति अलग अलग है, उनके विचार अलग अलग हैं, उनकी क्षमताएं अलग अलग हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी स्थितियां भी अलग अलग है, लेकिन जो समस्या है वो एक ही है, समस्या भय की ही है। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो भय हैं इनका निराकरण के लिए भी अलग अलग उपाय होंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है और ये केवल भय के बारे में ही नहीं है बल्कि यूं कह लीजिए कि जिंदगी की हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के बारे में हमें यह सिद्धांत अपने दिमाग में लेकर चलना चाहिए कि ये सारी की सारी समस्याएं और इनके निदान बड़े इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म का मतलब है कि कई चीजों के समाधान एक साथ होते हैं या कह लीजिए कि कई समस्याएं मिलकर के एक बड़ी समस्या को जन्म देती है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग उपाय बताए जाएं। इनफैक्ट अगर हम जिंदगी को समझ लेते हैं, जिसकी कोशिश आपके लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से करता हूं, तो आप देखेंगे कि आप खुद इसके सबसे अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब भी कोई समस्या आएगी आप उन सबको सुलझा लेंगे। तो भय के बारे में भी आपको फिलहाल इसी सिद्धांत को लेकर चलना होगा। दोस्तों, कल मैंने कुछ उदाहरण देते हुए आपसे ये विचार करने के लिए अर्ज किया था कि आप जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो भय है यह होता कहाँ है, यानी कि इसका एड्रेस कहाँ है, इसका निवास स्थान क्या है। आप सबने अपने अपने ढंग से सोचा होगा और मुझे लगता है कि सोचने के बाद एक बात तो आपके दिमाग में शायद आ ही गई होगी कि नहीं, जो हम कहते हैं कि किसी वस्तु में भय है शायद वहां नहीं है। क्योंकि अगर वस्तु में भय होता तो उस वस्तु से हर कोई भयभीत होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने देखा, आप देखिए कि सांप को देखिए, सांप से हम सब कितना डर जाते हैं, राइट? लेकिन जो सपेरा है वो नहीं डरता सांप को, तो बकायदे वो सांप को पकड़ते हैं। सदगुरु जैसे हैं जो बकायदे कोबरा टेस्ट करते हैं। तो यानी कि अगर सांप डरने की वस्तु होती तो हर कोई डरता। तो इससे आपको लग गया होगा कि नहीं, सही मायने में वस्तु में तो नहीं है। अगर मैथमेटिक्स से सबको डर लगता तो सबको लगना चाहिए, तो डर मैथमेटिक्स में नहीं है क्योंकि सबको नहीं लगता है। कुछ लोगों को डर नहीं लगता है, ज्यादातर लोगों को डर लगता है। तो एक बात आपके दिमाग में जरूर आ गई होगी कि नहीं, जो वस्तु होती है शायद भय उसमें नहीं होता है। अब चलिए मैं दूसरी बात पर आता हूं कि क्या सच में वस्तु में कोई भय नहीं होता। हम इसको उलट पलट करके चारों तरफ से देखने की कोशिश करते हैं, इतना सरल निष्कर्ष नहीं निकाल लेंगे हम कि वस्तु में नहीं होता तो फिर कहां होता है, तो हम में होता है। नॉट एट ऑल, वस्तु में भी भय होता है। अब आप कहेंगे कि ये तो उल्टी बात कही जा रही कि वस्तु में भी भय होता है। हाँ, यस होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत तेजी के साथ कोई तूफान आपके सामने आ रहा है और आप देख रहे हैं कि वो तूफान आ रहा है। समुद्रों में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आप देख रहे हैं कि ऊंची ऊंची लहरें समुद्र से उठती हुई और आपकी तरफ तेजी के साथ दौड़ती आ रही है। और उस समुद्र के तट पर मान लीजिए कि हजारों आदमी है, संडे का दिन है, छुट्टियां मनाने लोग गए हुए हैं। आप चेन्नई में देखिए, 2004 में जो सुनामी आई थी वो इसी तरह की का तूफान आप कह लीजिए कि सुनामी थी। अब आप क्या करेंगे। तो अब जब इस तरह का तूफान आ रहा है तो आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो इससे डरेगा नहीं, सभी के सभी जान बचाकर भागने की कोशिश करेंगे, भयानक रूप से भागने की कोशिश करेंगे, यानी कि सभी व्यक्ति उससे डर जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि यहां जो भय है उस तूफान में है, और अगर उस तूफान में भय है इसका मतलब है कि उस वस्तु में भय है। अगर भयानक दावानल आपके सामने आ रहा हो, जंगल में आग लग गई है और वो तेजी के साथ फैलते हुए आपके गांव में और शहर की तरफ घूमती हुई आ रही हो, बाढ़ एकदम तेजी के साथ आ रही हो, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है। हर को डर लगेगा, राइट। इसका मतलब यह हुआ यहां पर देखिए कि वस्तु में भी भय होता है। मैं यहां भी शब्द लगा रहा हूं, वस्तु में ही होता है, मैं नहीं कह रहा हूं वस्तु में भी होता है। यानी कि अब आप देखिए कि हमने दो निष्कर्ष निकाल लिए। पहला ये कि सभी वस्तुओं में नहीं होता, इसके आधार पर हम कह सकते हैं। और अगर दो अलग अलग निष्कर्ष निकालना चाहें तो कुछ वस्तुओं में भय होता है लेकिन अधिकांश वस्तुओं में भय नहीं होता है। अब थोड़ा सा देखिए कि मामला जटिल होता जा रहा है, यहां पर आकर के थोड़ा सा वह जटिल हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगर अलग अलग डायमेंशन से इसे देखने की कोशिश करेंगे तभी सही मायने में हम इसे समझ पाएंगे, और इनफैक्ट इससे छुटकारा भी हमें पाना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहां एक कहावत है, जो डरा वो मरा, शायद किसी फिल्म का डायलॉग भी है, जो डरा वो मरा। तो हमें मरना नहीं है, है ना। जब मरेंगे तब शरीर के तौर पर वो मरेंगे, लेकिन डर डर करके क्यों जीना, डर डर करके तो फिर हम हर क्षण मरते रहेंगे। तो इससे बचने की कोशिश करते हैं और सच मायने में हम जीने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए कि मैं अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, और इस उदाहरण के बाद आज के मैं इस लाइफ मैनेजमेंट को इसलिए खत्म कर दूंगा ताकि इस पर आप विचार करें। दोस्तों मान लीजिए कि आपके गांव में या आपके शहर में एक कोई खंडहर है जो पुराने समय में कभी महल वहल रहा होगा, पिक्चर्स में घर घर और महल देखते हैं, राइट। अब उसमें सैकड़ों साल से पचासों साल से कोई नहीं रह रहा है, तो जगह जगह उसमें जाले लग गए हैं, दीवालों पर उनके आप यूं कह लीजिए कि पौधे उगाए हैं, पता नहीं कितने दिन से वहां झाड़ू नहीं लगी हुई है, वहां चील और गिद्ध उड़ते हुए रहते हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, सारी चीजें हैं, राइट। आप उस खंडहर को दिन में भी देखते हैं और उस खंडहर को आप रात में भी देखते हैं, और रात में आप दोनों स्थितियों में देखते हैं, उस समय देखते हैं जब अंधेरी रात होती है और उस समय भी आप देखते हैं जब चांदनी रात होती है ना। अब आप थोड़े से अपने मनोविज्ञान का विश्लेषण कीजिए, अपने मनोविज्ञान पर जाइए। जब अंधेरी रात है तब आप उसे दो स्थितियों में देखते हैं, एक तो यह है कि अंधेरी रात है और आपको खंडहर, मतलब आप जान रहे हैं कि यहां खंडहर है, कुछ परछाई जैसी आपको दिखाई दे रही है, और अंधेरी रात में आप तब भी देखते हैं जब आपके हाथ में टॉर्च है और तब आप टॉर्च के जरिए उसे देखते हैं, ये सिचुएशन है। दिन में भी आप उस खंडहर को देख रहे हैं, रात में भी उस खंडहर को देख रहे हैं, रात में आप अंधेरी रात में भी देखते हैं और चांदनी रात में भी देखते हैं, आप अकेले भी उसको देखते हैं या आप उसे यूं कह लीजिए कि आप ग्रुप के साथ भी उसे देखते हैं, आप उस खंडहर को देखते हैं। अब जब आप उस खंडहर को देखते हैं इन अलग अलग स्थितियों में, तो आपके मन में जो भय का बोध होता है वो किस तरीके का होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, इसके बारे में आप सब अपने अपने स्तर पर विचार कीजिए, अपने अपने मनोविज्ञान को जांचिए और परखिए। इस पर हम लोग अब फिर कल बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आप सब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।